आज के इस क्वेश्चन और आंसर के सत्र में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आत्म भाई, प्लीज इस मंच पर आए, अपनी आसन ग्रहण करें। आप 3 दिवसीय सत्र में जब से आए हैं तब से लेकर अब तक काफी ज्ञान सुन रहे हैं, धारण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा है कि जो जो हम यहाँ सुन रहे हैं वो अपने जीवन में, चरित्र में जरूर हमको धारण करना है। तो सबको बहुत अच्छा तो लग रहा है, हमको कई फीडबैक भी मिल रहे हैं कि यहाँ वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिल रही है। और सबसे प्यारी चीज सबको यहाँ लगी जो यहाँ मिलती है, क्या? टोली माना प्रसाद। तो हमारे बीच जो आत्म भाई है, जो यहाँ आज आप ऊपर भी सारे हमारे पांडव भवन ज्ञान सरोवर भी देख के आए, तो आत्म भाई हमारे तीनों जगह जो टोलियां बनती है, इतना सारा जो प्रसाद है जो बनता है पूरी इन्हीं की देखरेख में बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि स्वीट सिर्फ हम खाएंगे नहीं, लेकिन ये हमारे भ्राता कितने स्वीट है यहाँ पे। तो आत्म भाई के बारे में थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। आपने ज्ञान नागपुर महाराष्ट्र 1972 में लिया। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से 1973 में एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है आप, और 1976 में, जरूर गोल्ड मेडलिस्ट होकर भी उन्होंने 1976 में माउंट आबू मुख्यालय में अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पण कर दिया। तो जोरदार तालियां हमारे भाई साहब के लिए। साथ ही साथ आपने भारत के सभी प्रांतों में ईश्वरीय सेवार्थ भ्रमण भी किया और राजयोग पर कई क्लासेस भी आपने कराए। रेडियो और दूरदर्शन पर आपकी इंटरव्यू समय प्रति समय प्रसारित होती भी है। आपकी विशेषता राजयोग का गहन अध्ययन स्वयं भी करना तथा दूसरों को भी कराना। और आपने सिर्फ भारत ही नहीं तो विश्व के पांचों ही महाद्वीप अर्थात अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया, ऐसे 84 देशों का भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राज्यों की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया। साथ ही साथ आप युवा प्रभाग, जैसे ये व्यापार एवं उद्योग प्रभाग है उसी प्रकार हमारा एक युवा प्रभाग है, यूथ विंग, उसके आप मुख्यालय के उस युवा विंग के आप मुख्यालय संयोजक है, एवं मधुबन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन तीनों परिसर जो आप प्रसाद सबको मिलता है सब उन्हीं की देखरेख में बनाया जाता है। तो और एक बार हमारे भ्राता के लिए हम तालियां बजाएं कि अपने इस व्यस्त समय में अपना टाइम निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं। जो आज हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है, आपके मन में कई सारे प्रश्न भी होंगे, मोस्टली तो सारे जवाब तो मिलते ही जा रहे होंगे सारे सेशन में, फिर भी कई ऐसे प्रश्न होंगे जिनके जवाब हमारे भ्राता जी देंगे। और कुछ ही देर में हमारी आदरणीय राजयोगिनी दीदी गीता दीदी भी यहाँ पहुंचेंगी। तो सबसे पहले हम आत्म भाई से निवेदन करेंगे कि इनकी जो सबसे ज्यादा विशेषता है कि राजयोग का गहन अध्ययन इन्होंने किया है, उसके ऊपर थोड़े विचार अगर आप हम सबके बीच में रखें।
ओम शांति। इस विद्यालय में राजयोग की शिक्षा दी जाती है। इस योग को राजयोग क्यों कहते हैं? ये योग सभी योगों का राजा है, क्योंकि आज तक जितने भी संसार में विभिन्न प्रकार के योग सिखाए गए हैं वो किसी न किसी महान आत्मा ने, पुण्यात्मा ने, धर्मात्मा ने, सिखाए हैं, लेकिन यह राजयोग स्वयं परमात्मा, सर्वशक्तिवान परमात्मा सिखाते हैं, इसलिए यह योग सभी योगों का राजा कहलाता है। दूसरी बात, इस योग के अभ्यास से हम अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनते हैं, क्योंकि हम देखते हैं मन बुद्धि संस्कार स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हमारी हैं, उनके हम गुलाम बन चुके हैं, तो उन्हों पर नियंत्रण करना और अनुशासन करना और स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना, इस राजयोग के अभ्यास से हम सीखते हैं। और तीसरी बात, इस राजयोग के अभ्यास से राजयी संस्कार, रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार हमारे जीवन में धारण होते हैं, क्योंकि भविष्य का शरीर छोड़ने के बाद हम जो जन्म लेते हैं वो अपने संस्कारों के आधार पर लेते हैं। जब रॉयल संस्कार आत्मा में धारण होते हैं तो भविष्य में हमारा जन्म ऐसे ही रॉयल परिवार में स्वतः ही होता है, इसलिए इस योग को राजयोग कहते हैं। अभी जितने भी योग विभिन्न प्रकार के सिखाए जा रहे हैं वो मूलतः अपने शरीर से संबंधित हैं, और यह जो राजयोग है वो डायरेक्ट मन से संबंधित है। कहते हैं हेल्दी माइंड हैज हेल्दी बॉडी, अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन भी स्वस्थ होता है। तो इस राजयोग के अभ्यास से हम मेंटली और फिजिकली हेल्दीनेस अनुभव करते हैं। वैसे कहने में आता है मेडिटेशन इज मेडिसिन, यह जो राजयोग है ये मेडिटेशन मेडिसिन का काम करता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है 80% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस, पहले हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और फिर हमारे तन में ट्रांसफर होते हैं। तो इस राजयोग के अभ्यास से एक कला हम सीखते हैं, हमारे मन में हमेशा सकारात्मक संकल्प, शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करने की कला हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वेस्ट हो, हर एक संकल्प का हमारे शरीर की जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है 75 trillion बॉडी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी, और वट एवर द थॉट्स वी आर क्रिएटिंग इन अवर माइंड, ईच एंड एवरी थॉट हैज डीप इम्पैक्ट ऑन ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स और अवर बॉडी। तो सकारात्मक चिंतन करते हैं तो उसका प्रभाव सकारात्मक होता है, लेकिन जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से पास होते हैं और हमारे मन में नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होते हैं तो उस नेगेटिव संकल्प का बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी सेल्स पर होता है, और उसके कारण हमारे शरीर में एक बहुत नुकसान देने वाला हार्मोन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है और सप्रेस होने के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हमारे शरीर में आने लगते हैं। लेकिन इस राजयोग के अभ्यास से सिचुएशन फेवरेबल हो या फेवरेबल ना हो, उस समय भी हम सकारात्मक चिंतन मन में उत्पन्न करते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम्स होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। मेडिकल साइंस में उसको कहते हैं फेथ हीलिंग। वी कैन क्योर आवर ओन डिसीजेस बाय क्रिएटिंग प्योर थॉट्स इन आवर माइंड। तो कहने का भाव मेरा ये है कि इस राजयोग के अभ्यास से हम हेल्दी लाइफस्टाइल अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात, इस राजयोग का अभ्यास डेली क्यों करना जरूरी है। मैं 2006 में रशिया गया था। रशिया में मास्को यूनिवर्सिटी में 200 युवाओं के साथ संबोधन कर रहा था। मुझे उन्होंने टॉपिक दिया था हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फियर एंड हाउ टू डेवलप द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैंने उनको कुछ टिप्स बताए, लेकिन टिप्स बताने के बाद एक बात पर मैं जोर देता रहा कि नो मैटर हाउ बिजी यू आर बट एवरी डे यू शुड प्रैक्टिस दिस राजयोगा मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर ए वाइल। किसी भी हालत में आपको राजयोग का अभ्यास डेली करना जरूरी है। मेरे प्रवचन के बाद एक स्टूडेंट्स खड़ा हो गया ऑडियंस में। मेरा एक प्रश्न है, बोलो कौन सा प्रश्न है। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई एग्जामिनेशन फियर नहीं है, मेरी कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी है, मुझे ये राजयोग का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों बार बार आप इस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, उसका कारण मुझे बताओ। मैंने एक छोटा सा उदाहरण उनको दिया। सेल फोन हमारे पास होता है, उसको हम यूज करते हैं, बातें करते हैं, जैसे जैसे उसको यूज करते हैं धीरे धीरे सेल फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, होती है ना, होती है ना। तो ऐसे हमारा शरीर एक सेल फोन की तरह है और सोल जो है उसकी बैटरी है, उसकी एनर्जी को हम कैसे यूज करते हैं। संकल्पों के माध्यम से ऊर्जा हमारी यूज होती है और संकल्प के माध्यम से ही परमात्मा जो सर्वशक्तियों के सागर हैं उनसे शक्तियां प्राप्त करने से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। अगर आप सारे दिन भर में अपने मन में जो थॉट पैटर्न चलता है उसको अगर आप चेक करेंगे तो चार प्रकार के संकल्प हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। पहला प्रकार है आवश्यक संकल्प। जो भी हम अपने लिए काम करते हैं, कारोबार की बातें करते हैं, उनके लिए संकल्पों की आवश्यकता होती है, उसको नेसेसरी थॉट्स कहते हैं। उससे आत्मा की थोड़ी थोड़ी ऊर्जा यूज होती है। दूसरा प्रकार है व्यर्थ संकल्प। हम किसी भी बात के लिए बार बार हम रिपीटेडली संकल्प करते हैं तो उसको वेस्ट संकल्प कहते हैं। उसके द्वारा आत्मा की बहुत ऊर्जा वेस्ट होती है, वो लीकेज एक प्रकार का कहलाता है। और तीसरा प्रकार है नेगेटिव संकल्प। किसी भी विकार से संबंधित, किसी भी नेगेटिविटी के संबंधित जो संकल्प चलते हैं उसको नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। उससे आत्मा की बहुत ऊर्जा नष्ट होती है। और चौथा है परमात्मा के प्रति संकल्प करना, उसको कहते हैं गीता में कहते हैं मन मना भाव। मन मेरी याद में मनाओ, लगाओ। जब सर्वशक्तिवान परमात्मा जो शक्तियों के सागर हैं उनसे जब हम मन जोड़ते हैं, संकल्प करते हैं, तो धीरे धीरे आत्मा में ऊर्जा आने लगती है और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो जैसे शरीर की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए हर रोज हम बढ़िया सा लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, डिनर लेते हैं, मान लीजिए किसी कारण आपका ब्रेकफास्ट भी मिस हो गया, लंच भी मिस हो गया। रात को आप जब घर में वापस आते हैं, आप चेहरा आईने में देखो, बिल्कुल थका थका सा चेहरा लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर की ऊर्जा बहुत डाउन हो गई। उसके बाद आपने मन पसंद भोजन खाया, जो आपको पसंद है, उसके बाद आपका चेहरा खिल जाता है, एकदम प्लेजेंट अनुभव होता है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा बहुत अच्छे मेंटेन हो जाती है। तो जैसे शरीर की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए हर रोज भोजन जरूरी है, ऐसे मेंटल की ऊर्जा को, आत्मा की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए यह मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब ये मेडिटेशन हम करते हैं तो सारे दिन भर में बहुत उमंग, उत्साह, एक बहुत अच्छी ऊर्जा हम अपने जीवन में अनुभव होने लगते हैं, करने लगते हैं। कहते हैं भगवान ने हमें ये चेहरा दिया है, बहुत सुंदर चेहरा दिया है हरेक को, लेकिन चेहरे पर अगर मुस्कुराहट नहीं होती है तो वो चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो चेहरा प्रसन्न होता है, लेकिन मन के प्रसन्नता को चुराने के लिए तीन चोर बार बार हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, चिंता, भय और बोझ, ये तीन चोर बार बार हमारा मन का दरवाजा खटखटाते हैं। और राजयोग के अभ्यास से ये तीनों चोर भाग जाते हैं और हमारा सदा मन प्रसन्न रहता है और हम बहुत अच्छी तरह से खुशनुमा जीवन अनुभव करने लगते हैं। तो इसलिए डेली राजयोग का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह राजयोग किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। स्वयं को आत्मा समझना और जो आत्माओं का पिता परमात्मा है उनसे कनेक्शन, बुद्धि का जोड़ना, ये हर कोई कर सकता है। इसलिए सारे विश्व में हर धर्म के लोग इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि डेली इस राजयोग का अभ्यास मॉर्निंग में या इवनिंग में आप कुछ समय के लिए करेंगे तो सारे जीवन को आप एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए इसका अभ्यास आप करते रहेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
धन्यवाद भाई साहब, काफी गहराई में पता चला कि मेन जो है, अगर मन ठीक है तो हमारा तन ऑटोमेटिक ठीक ही हो जाएगा, लेकिन मेन सोर्स क्या है? पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक चिंता। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी पधार चुके, हम एक बार वापस उनका ताली बजाकर या एक हाथ की ताली से उनका वेलकम करेंगे। दीदी को तो हम दो दिन से सुन ही रहे हैं कि कितनी ज्ञान बिना इनके मुख पर बरसती है। तो दीदी जी, आपके लिए प्रश्न है, पूछा है कि अपनी शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाना है। हम सभी चाहते हैं कि अपना जो भी जीवन, चाहे जैसे जी रहे, कि खुशहाल रहे, लेकिन उसमें कई ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप वो कई बार मजबूत नहीं होते, कहीं ना कहीं वो अनबन होती रहती है, और रिलेशनशिप में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़े तो कैसे उसको हल करें, माना हमारा लाइफ हम कैसे खुशहाल कर सके।
ओम शांति। बहुत ही अनमोल मानव जीवन हम सबको मिला है, तो वो हमारा जीवन हम खुशी प्रसन्नता से जिए वो बहुत जरूरी है। और संसार तो अनादिकाल से प्रवृत्ति मार्ग का ही बना है। इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए हमें खुशी और आनंद का अनुभव करना है तो दो मुख्य शक्ति हमारे जीवन में चाहिए। एक है सहनशीलता। सहनशीलता बहुत बड़ी शक्ति है, इसको समझना, धारण करना बहुत जरूरी है, ताकि कोई कैसा भी व्यवहार करे पर अगर हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ है, सहन शक्ति है, तो हम अच्छा ही रेस्पॉन्स करेंगे, अच्छा ही व्यवहार करेंगे। और वो सहन शक्ति तब हमारे में आती है जब एक दो के लिए हमें स्नेह हो, प्यार हो। जैसे माँ बच्चे की कैसी भी हरकत को सहन करती है क्योंकि उनको बच्चे से प्यार है, ऐसे ही अगर सभी आत्माओं से प्यार हो, परिवार में माँ बाप भाई बहन है, ससुराल में भी पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सास ससुर है, जो भी है, कार्यक्षेत्र में भी लोगों के साथ ही काम करना है, घर में भी हमें एक दो के सहयोग से ही जीना होता है, तो सहन शक्ति तब आती है जब सबके लिए सच्चा प्यार हो, निस्वार्थ प्यार हो, तो हम उनको सहन कर सकेंगे। और दूसरा है एडजस्टमेंट पावर। हम सभी अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं, ये इस वर्ल्ड ड्रामा की विशेषता है कि एक न मिले दूसरे से, हरेक की शक्ल भी अलग अलग है, हरेक की अकल भी अलग अलग है। तो अगर संबंध जोड़ा है तो जो है जैसे हैं हमें एक दो को प्यार से स्वीकार करना चाहिए, उसको कहते हैं एडजस्टमेंट पावर। जब वो एडॉप्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है कि मुझे जो मिले हैं ऐसे ही तो नहीं मिले हैं ना, कर्मिक अकाउंट से मिले हैं, इसलिए जो मिले हैं एक्यूरेट मिले हैं, हम उनको चाहे स्वीकार करें। तो अगर ये एडजस्टमेंट पावर और सहनशीलता है तो हम एक दो के साथ मिलके चल सकेंगे, जी सकेंगे, एक दो के सहयोगी बन सकेंगे और हमारा जीवन हम खुशी से जी सकेंगे। बहुत छोटी छोटी बातों में हम अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आत्मा में ये शक्तियां नहीं है, सहनशीलता नहीं है, एडजस्टमेंट पावर नहीं है, एक दो को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन आते हैं। पर इंसान अकेला भी तो नहीं जी सकता है, परिवार जो मिले हैं उनको आप स्वीकार नहीं करेंगे तो किसी को तो करेंगे, किसी के साथ तो रहेंगे ना, तो इससे तो क्यों नहीं। जो कर्मिक अकाउंट से संबंधी हमें मिले हैं हम उनको ही प्यार से स्वीकार करें। तो जितना जितना आप अपनी आंतरिक आत्मशक्ति बढ़ाएंगे तो एक दो को समझना, एडजस्ट करना, मिलके चलना, टॉलरेट करना आसान हो जाएगा। पहले बड़े बड़े परिवार साथ रहते, आजकल छोटे छोटे विभक्त परिवार बन गए हैं। पति पत्नी और बच्चे वो भी मिलके नहीं चल पाते हैं, क्योंकि मूल चीज यही है कि सहन शक्ति नहीं है, एक दो को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, एडजस्टमेंट पावर नहीं है, प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। ये वैल्यूज ना होने के कारण ही कितनी भी चीजें हैं, साधन है, वैभव है, पर खुशी नहीं। तो अगर आप ये भी एक लक्ष्य रखेंगे अपने आंतरिक गुण और शक्तियों का विकास करना, एक दो के लिए शुभ भावना रखना, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। रोज सुबह उठकर आप 5 मिनट परमात्मा को याद करते हैं, ऐसे 5 मिनट आप परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, कार्यक्षेत्र के साथियों के लिए रोज शुभ भावना फैलाइए, शुभ वाइब्रेशन दीजिए, तो इससे हमारे संबंध ऑटोमेटिक मीठे बनते जाएंगे। ओम शांति।
बहुत सुंदर कि जो अनबन होती है, मेन क्या है, कोई एक दूसरे को सहन करना नहीं चाहता है, सहन शक्ति का अभाव। बहुत ही सुंदर दीदी ने कहा कि आपस में स्नेह प्यार हो। सबसे पहला लेसन हमने देखा, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। आत्मिक नाते अगर देखे तो क्या दिखाई देगा, एक दूसरे के प्रति सिर्फ उनके गुण ही दिखाई देंगे, है ना। और भी किसी को प्रश्न अगर है तो यहाँ आकर दे सकते हैं, हमारे जो नीचे सेवाधारी उनको दे सकते हैं, ताकि आपके प्रश्नों का हल हम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतम भाई जी आपको, कि पूछा है कि कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आप बताइए कि आत्मा परमात्मा से अलग कैसे होती है।
ओम शांति। आज तक हम समझते आए हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारा पिता है और हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो बच्चा कभी आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश नहीं होता है, लेकिन परमात्मा का बच्चा कहलाता है। इसलिए परमात्मा को हम पुकारते आए हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव के रूप में। वैसे परमात्मा कहते हैं इस संसार में 750 करोड़ आत्माएं हैं, वो परम धाम में सोल वर्ल्ड में रहती हैं और सबका पिता परमात्मा भी वहीं रहते हैं। और आत्माएं अपने अपने समय के अनुसार इस रंग मंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं और अपना पार्ट बजाते हैं, और जैसे जैसे वो पार्ट बजाते हैं तो इस ड्रामा के अंत में, कलयुग के अंत में जब धर्म की ग्लानी बहुत होती है, तो अनेक धर्मों का विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरती पर आते हैं। और खुशी की बात ये है कि जिसको हम जन्म जन्म पुकारते आए हैं, वो स्वयं परमात्मा इस धरती पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं और आत्माओं को पुनः पावन बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो कहने का भाव मेरा है कि आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा के हम सभी बच्चे हैं और वो हमारा बाप है। बाप कभी बच्चे में समाया नहीं रहता है या बच्चा बाप में समाया नहीं रहता है, क्योंकि हम परमात्मा को पुकारते हैं कि हे परमात्मा आओ हमें दुख से छुड़ाओ। इसका मतलब परमात्मा यहाँ नहीं है, वो ऊपर है, ऊंचा जिसका धाम, ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका काम कहते हैं, तो वो परमात्मा अभी आ चुके हैं और आत्माओं का कल्याण कर रहे हैं। तो इसलिए वो हमारा पिता है और हम उनके आत्माएं बच्चे हैं, इसलिए अंश नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा जो संबंध है बाप और बच्चे का वो हमें निभाना है। और बाप का काम है बच्चों को मदद करना, तो परमात्मा हमें मदद करने के लिए आते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं, क्योंकि हम देखो बहुत कड़ी समस्या में फंस जाते हैं। हमें धरती पर जो भी लोग होते हैं आसपास में, वो मदद करने के लिए असमर्थ होते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है बोलो? हाँ जी, कहाँ जाता है ध्यान? हे ऊपर वाले थोड़ी मेरे पर दया कर, ऊपर जाता है हमारा ध्यान। मानो ऊपर कोई एक शक्ति है जो मदद करने के लिए काबिल है, तो वो मदद करने के लिए परमात्मा इस कलयुग के अंत में संगम युग में आते हैं और हम बच्चों को, आत्माओं को पावन बनाते हैं, शक्तियों से संपन्न करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को एंजॉय करने लगते हैं। ये मेरा विचार है। दीदियां, दीदी थोड़ा और बताएंगे।
बहुत अच्छा भाई साहब ने जवाब दिया। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि आत्मा अविनाशी चैतन्य शक्ति है और परमात्मा भी अविनाशी चैतन्य शक्ति। न आत्मा भौतिक है न परमात्मा भौतिक है, तो ये कोई चीज नहीं है जो उनके टुकड़े हो जाएं, अंश हो जाएं। दोनों का अपना अलग अलग अविनाशी अस्तित्व है। भक्ति में हम ये मानते रहे कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से अलग हुए हैं और परमात्मा में मिल जाएंगे। तो ऐसे परमात्मा कोई खंडित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है, वो तो अविभाज्य है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए ऐसे कोई अंश नहीं होते हैं, हम उनके बच्चे हैं। जब हम उनको भूल जाते हैं तो हम पतित बन जाते हैं, फिर वो पिता आते हैं, फिर से आप समान पावन बनाते हैं। ओम शांति।
धन्यवाद भाई जी और दीदी जी। अगला क्वेश्चन दीदी आपको है कि बिजनेस जब हम करते हैं तो कई बार कंपटीशन इसमें बहुत चलती है और प्राइस अप एंड डाउन होते, तो कई बार डर होता है कि कहीं हमारे कस्टमर छूट ना जाए, और इसमें यहाँ सिखाया जाता है कि झूठ बोलना मना है। झूठ नहीं बोलो, अपने वैल्यूज को लेकर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो हमारे इस डर को हम कैसे दूर करें? हमारा डर है कि कंपटीशन इतनी बढ़ती जा रही है, झूठ बोलना जरूरी है क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, तो हम सच्चाई की राह पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं
देखो शुरू में आपको ऐसा लगेगा, पर जब आपकी समाज में, बिजनेस वर्ल्ड में, मार्केट में एक इम्प्रेशन बन जाएगी कि ये बहुत ऑनेस्ट व्यापारी हैं और क्वालिटी चीजें देते हैं, कोई मिलावट बनावट नहीं करते हैं, इनके पास बच्चे को भेजो तो भी धोखा नहीं मिलेगा, अगर आपकी एक बार ये इमेज बन जाएगी फिर अपने आप लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। सफलता ही सफलता होगी। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि हम कैसे चलेंगे इतनी कंपटीशन में, पर ऐसा नहीं है। लोग भी परखते हैं, ग्राहक भी परखते हैं कि कौन सच्चे हैं, कौन मिलावट करते हैं, कौन बनावट करते हैं। एक बार कोई धोखा खा लेगा पर फिर वापस आपके पास नहीं आएगा। पर अगर आपकी इम्प्रेशन है कि ये ऑनेस्ट है और क्वालिटी ही देते हैं तो अपने आप लोग विश्वास करेंगे और आपके पास आएंगे। तो धीरज रखना है और अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दीदी यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने को मिल रही है, गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना। 3 दिन तक तो हमने गुस्सा किया भी नहीं है ना आया, क्योंकि बहुत अच्छा वातावरण मिला। लेकिन यहाँ से जब हम जाएंगे तो उसको कैसे मेंटेन करें? और दूसरा ये है कि अब हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे जो संबंधी है या साथी है वो ना भी चले। हम कोशिश तो करेंगे कि वो भी चले, लेकिन नहीं चलते हैं। और हम चाहते कि उनको भी ज्ञान के हिसाब से चलाए, लेकिन कई बार वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करें? और एक और उसमें क्वेश्चन दीदी कि हम समझते कि गुस्सा करके हमारा काम जल्दी हो जाता है, क्या ये सही है आचन भाई या दीदी?
बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको यहाँ 3 दिन गुस्सा नहीं आया, ये बताता है कि इस ज्ञान युग के माहौल के प्रभाव में देखो आपके अंदर इसको कंट्रोल करने की शक्ति आई। तो अगर यही ज्ञान योग का अभ्यास घर जाकर भी सुबह या शाम 1 घंटा अगर हम खुद को देंगे, परमात्मा को देंगे, तो इससे धीरे धीरे हमारे अंदर वो पावर आ ही जाएगा कि फिर कितनी भी बातें हों, कैसे भी लोग हों, तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए शुरुआत हमें करनी है और समझना है कि यही वातावरण अगर हम खुद के लिए बना के रखें, घर में ऐसा माहौल बनाएं, तो अवश्य हमारे अंदर शक्ति आती है और हमारा परिवर्तन होता है। बाकी हमारे मित्र संबंधी, उनको हमें सत्य ज्ञान का संदेश जरूर देना है। वो चले न चले, उनका अपना इंटरेस्ट है, उनकी अपनी इच्छा की बात है, उनके अपने भाग्य की बात है, पर मुझे अपने जीवन में ज्ञान धारण करना है। वो किसी के आधार पर थोड़ी करना है, मुझे तो अपनी विल से करना है। मेरा अपना डिसीजन हो कि मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है। ऐसा तो नहीं है ना कि सब करेंगे तो हम करेंगे, नहीं, जो सही है वो मुझे करना ही है, कोई करे या ना करे। हर एक अपने जीवन का मालिक है, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ, इसलिए मुझे अपने डिसीजन में पक्का रहना है। और हमारा परिवर्तन जब वो देखेंगे कि ज्ञान और योग का अभ्यास करने से इनके जीवन में परिवर्तन आया है, उनका स्वभाव शांत हुआ है, व्यवहार अच्छा करते हैं, सुखदायी बोल बोलते हैं, अगर आपका परिवर्तन देखेंगे तो अपने आप सबका सहयोग भी आपको मिलेगा। तो हमें किसी पर डिपेंड होके नहीं चलना है, हमें अपने डिसीजन से चलना है कि मुझे मेरा जीवन शांति और प्रेम से जीना है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आतम भाई जी, आपके लिए अगला क्वेश्चन कि आज के समय बच्चों को संस्कारवान हम कैसे बनाएं? क्या डांटकर भय से उन्हें संस्कारवान बनाया जा सकता है? आप जरा इसके ऊपर प्रकाश डालिए।
बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे डालें? कहते हैं सबसे पहली गुरु बच्चे की होती है माँ। तो बाल्यकाल से अगर हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, उनको बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, तो बच्चा अच्छे संस्कार धारण करने लगता है। और जब वो स्कूल में जाता है तो शिक्षक उनको मूल्यों का ज्ञान सिखाते हैं। तो घर वालों को ध्यान देना है मूल्यनिष्ठ जीवन बच्चों का हो, तो उसके लिए लव और लॉ का बैलेंस भी हमें रखना है। कभी बच्चा कुछ गलत काम करता है तो उसको प्यार से भी समझाएं, अगर प्यार से नहीं समझता है तो थोड़ा लॉफुल अर्थात थोड़ा सा कड़क होकर भी उसको हम दिल में शुभ भावना रखते हुए उसको शिक्षा दे सकते हैं। और बच्चों के लिए हम टाइम जरूर दें। आजकल माँ बाप इतने बिजी रहते हैं, जो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। वो अपने पढ़ाई में रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो एकांत में बच्चों के साथ बैठकर उनको प्यार दें, शिक्षाएं दें और मूल्यों की भी शिक्षाएं उनको देंगे तो धीरे धीरे बच्चे संस्कारी बनते हैं। तो वो कहते हैं बड़ा होकर कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बचपन में, अगर वो संस्कार नहीं देते हैं तो आज हम ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच सकते थे। ऐसे कई बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं। और जो भी बाल बालवाड़िया होती है उसमें भी अच्छे संस्कार देने के लिए, ज्ञान देने के लिए बातें करते हैं। तो लेकिन इस विद्यालय में भी हमारे पास देखो माँ बाप भी इस राजयोग का अभ्यास करने के लिए आते हैं और बच्चे भी ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए आते हैं। यहाँ हर वर्ष मई मास में 1,500-2,000 बच्चे आते हैं जो रेगुलर राजयोग की शिक्षा सेवा केंद्र पर जाकर करते हैं और बहुत अच्छा जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। माँ बाप के साथ भी जाते हैं, माँ बाप के अलावा भी जाते हैं। कहने का भाव है इस विद्यालय से जुड़े हुए होने से जो हमें ज्ञान मिलता है उससे दिव्य गुण जीवन में धारण होने लगते हैं और उससे हमारे संस्कार भी दैवी बनते हैं, रॉयल बनते हैं। इसलिए सारा जीवन की जो हमारी कमाई है, असेट है, वो केवल संस्कार ही है। संस्कार लेकर ही जब शरीर छोड़ते हैं तो केवल संस्कार साथ में हम ले जाते हैं। इसलिए बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझाते हैं तो जरूर बच्चे बड़े होकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने में सफल होते हैं। ओम शांति।
बहुत सुंदर दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 750 करोड़ आत्मा है और परमात्मा के साथ परम धाम में रहते हैं, अगर वो अपने समय अनुसार नीचे आते हैं तो फिर कर्म का फल हम कब पाते हैं? और इसमें और एक क्लैरिटी चाहिए कि हम परमात्मा के लिए कहा कि जन्म मृत्यु से परे है, तो इसका मतलब क्या है?
हरेक आत्मा अपने रोल अनुसार सृष्टि रंगमंच पर आती है और अपना पार्ट प्ले करती है। जैसे फिल्म बनाते हैं तो उनका स्टोरी बनाते हैं, फिर एक्टर्स चुनते हैं, फिर उनको रोल देते हैं और फिर वो स्टेज पर आकर अपना पार्ट प्ले करते हैं। ऐसे हर आत्मा के अंदर उनका पार्ट नुंधा हुआ है, अनादि अविनाशी। जैसे हर बीज का अपना पोटेंशियल है, कोई उसमें पोटेंशियल डालने नहीं जाता है, पर हर बीज का अपना अपना पोटेंशियल है और इस रीति वो बीज फिर अपने प्रकार के ही फूल फल पत्ते उगाते हैं और देते हैं। सेम हर आत्मा के अंदर भी उनके अपने संस्कार रिकॉर्ड हैं और इसलिए वो अपने रोल अनुसार स्टेज पर आते हैं, पार्ट प्ले करते हैं और वो पार्ट जिस रीति से प्ले करते हैं उस रीति से उनके स्वभाव संस्कारे उनका कर्मों का हिसाब किताब बनता जाता है। इसलिए जब हम इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और कर्म करते हैं उस समय हमें अटेंशन देना है कि हम अपना हर कर्म बेस्ट प्ले करें। भाई एक्टर को पार्ट दिया गया पर उसको बेस्ट रीति से प्ले करना वही उसकी कला है, वही उनकी विशेषता है। ऐसे हर आत्मा में पार्ट रोल अंदर रिकॉर्ड हैं पर प्रैक्टिकल जब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो हम वो पार्ट कैसे प्ले करते हैं उसमें हमारे कर्मों के हिसाब किताब बन जाते हैं। अब आपका रोल क्या रिकॉर्ड है वो आपको तो पता नहीं है, कोई को भी पता नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपना हर कर्म अच्छे से अच्छा करें। इसलिए गीता में कहा है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। हमारा रोल इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या है हमें तो नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट मिनट का भी पता नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम अच्छे से अच्छी रीति उस पार्ट को प्ले करने का लक्ष्य रखें। और दूसरा प्रश्न क्या था?
परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है।
हाँ, जन्म मरण से न्यारा है मीन्स कि वो हमारी तरह कर्मिक अकाउंट से जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। आज आत्मा शरीर धारण करती है वो कर्मिक अकाउंट अनुसार करती है, शरीर छोड़ती है कर्मिक अकाउंट अनुसार छोड़ती। इसलिए जब कोई शरीर छोड़कर जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई ऋणानुबंध पूरा हुआ तो चले गए। तो आत्मा का शरीर धारण करना और शरीर छोड़ना वो कर्मों के हिसाब किताब अनुसार है। इसलिए वो हिसाब किताब बनता जाता और हम जन्म मरण में आते जाते हैं। पर परमात्मा का कोई कर्मिक अकाउंट नहीं, वो कर्मातीत है। इसलिए वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। जब कलियुग के अंत समय वे सृष्टि पर आते हैं तो वे परकाया प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और उसकी बॉडी को यूज करते हैं, क्योंकि उनको अपनी बॉडी नहीं है और ना उनका कोई ऐसा कर्मिक अकाउंट है। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, पर है, माना वो इस साइकिल में नहीं आते।
बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है आतम भाई जी से कि कई बार अभी यहाँ जैसे हमको पता चला परमात्मा तो एक है, लेकिन इसके पहले भी हम कोई ना कोई सत्संग में जाते थे और काफी समय से उसका अभ्यास भी करते थे, तो यहाँ भी अच्छा लग रहा है, वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, कोई रीजन नहीं मिल रहा है कि हम उनको छोड़े, और यहाँ पे भी ये कर रहा है, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें। और दूसरा ये है कि आज हम तो चल रहे, वंस अगेन वो प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि हम हमारे लिए वाइब्रेशन तो दे रहे हैं, परमात्मा से लेकर योग कर रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे बहू इन लोगों के लिए हम कैसे सकाश देवे ताकि उनके रिलेशन भी बहुत अच्छे बने।
पहला प्रश्न क्या?
पहला प्रश्न ये था भाई जी कि जो हम यहाँ आकर सुन रहे हैं ये भी अच्छा लग रहा है और पहले जो हम सत्संग में जाते थे वो भी अच्छा लगता है, तो कंफ्यूज हो रहा है कि हम क्या किस कारण से वो छोड़े, अगर वो छोड़कर ये करे तो वो नाराज हो जाएंगे, कई ऐसे प्रश्न है।
बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रश्न पूछने वाले ने। कहते गॉड इज वन, परमात्मा एक है और परमात्मा सत्य है, लेकिन उसको पाने के लिए रास्ते अनेक हैं। कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई राम की करता है, कोई किसी के करता है। इस संस्था में आने के पहले 45 वर्ष पहले मैं हनुमान और कृष्ण की पूजा करता था और बहुत भक्ति में रंगा हुआ था और चारों धाम मैंने उम्र के 22 साल के उम्र तक किए, चारों धाम किए। मेरी एक ही इच्छा थी, अगर इस संसार में भगवान होंगे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और मैंने बहुत प्रयास किया, कोई मैंने संस्था नहीं छोड़ी, कोई मैंने ऐसा शास्त्र नहीं छोड़ा, बहुत पढ़ाई किया, कितने संस्थानों पर किया, कितना धार्मिक किताबें पढ़ी। तो बाद में 1972 में नागपुर में इस विद्यालय में कोई मुझे ले गया और उन्होंने मुझे कहा 7 दिन का कोर्स करो। 7 दिन का कोर्स मैंने 21 दिन तक किया, हर रोज 1 घंटा में देता था। वो बहन जी कहती थी इतने में प्रश्न पूछता था, इतने प्रश्न पूछता था, कहते ये माथा खाने वाला कहां से आ गया पता नहीं, इतना प्रश्न पूछ रहा है। तो जब तक प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन मैंने 15-20 दिन में एक अनुभव ऐसा किया कि सर्वशक्तिवान परमात्मा यहां जरूर है, जो आज तक मैंने नहीं प्राप्त किया है वो यहां मैंने प्राप्त किया है। और मैं 73 में यहां आया पहली बार परमात्मा से मिलने के लिए ऊपर माउंट आबू। अभी दीदी ने बताया कि परमात्मा अवतरित होते हैं, अलौकिक जन्म धारण करते हैं। गीता में 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, अवजानन्ति मा मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम, कि मैं निराकार हूं, सर्वशक्तिवान हूं और एक साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूं और उनको कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा देता हूं और उनके कमल मुख द्वारा ज्ञान देता हूं, सत्य ज्ञान देता हूं। लेकिन मूढ़मती लोग पहचानते नहीं हैं, जब कहते हैं परमात्मा धरती पर आए थे लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। तो जैसे दीदी ने कहा परमात्मा आकर अपना कार्य कर रहे हैं। अभी बात आती है मैं हनुमान की किसकी पूजा करता हूं, वो अगर छोड़ दूं तो हनुमान जी मेरे से नाराज हो जाएंगे, ये प्रश्न भी हमारे मन में भी था पहले और सबके मन में आता ही है। स्पष्ट बात है, हनुमान जी राम की पूजा करते हैं और रामेश्वर में आप जाएंगे तो राम जो है शिव की पूजा करते हैं, या गोपेश्वर में आप जाएंगे तो गोप माना श्री कृष्ण भी शिव की पूजा करते हैं। तो शक्तियों का केंद्र बिंदु है परमात्मा शिव, सभी उनसे शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो अगर हनुमान जी की मैं पूजा करता हूं और ये शिव सर्वशक्तिवान का मुझे मैसेज मिलता है तो हनुमान जी की पूजा छोड़ता हूं तो मेरा कोई अनर्थ तो नहीं होगा, ये संकल्प आपके मन में जरूर आता होगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं, 10वीं आप पढ़ रहे हैं, 10वीं में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, देखो हमारी दीदी मेरिट में आई थी, थोड़ा दीदी के लिए तालियां बजाओ, हमारी दीदी के लिए मैट्रिक में मेरिट में आई थी फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी पोजीशन में आई थी गीता दीदी जी हमारी है। तो मैट्रिक छोड़कर कॉलेज में जाते
ये भी तो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है आसम भाई।
मैट्रिक छोड़कर अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो मैट्रिक में जो शिक्षक हमारे होते हैं वो तो हमारे से नाराज नहीं होते तो और भी खुश होते हैं, मेरा स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके और आगे बढ़ रहा है, आगे पढ़ाई के लिए जा रहा है। तो हनुमान से ऊंचे जो परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम है, उनका परिचय हमें अभी मिला है, इसलिए हम उनको भजते हैं, उनको याद करते हैं, योग साधना करते हैं। तो हनुमान को छोड़ना है, इसको पकड़ना है, ये बात नहीं है। हनुमान जी की जो पूजा आपने की, भक्ति की, उसका फल परमात्मा की प्राप्ति आपको हुआ है। भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति। ये जो ब्रह्मा बाबा है ना हमारे, इन्होंने 12 गुरु किए थे, 12 गुरु, और जब उनकी उम्र 60 साल की थी उनको साक्षात्कार हुआ परमात्मा का, तो वो उनके समझ में नहीं आ रहा था, तो अपने गुरु के पास गए, आपने ये साक्षात्कार कराया क्या? उसने कहा भाई मेरे बस की तो बात नहीं है, ये कराने वाला वो सर्वशक्तिवान है, महान सर्व सुप्रीम पावर है। तो उन्होंने उस बात को समझ लिया और परमात्मा के साथ योग साधना करना शुरू किया। तो इसमें छोड़ने की और पकड़ने की बात नहीं है। आप सभी यहाँ जो सभा में बैठे हैं बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं, तालियां बजाओ अपने लिए जरा प्लीज। क्यों भाग्यशाली है मैं कह रहा हूँ, ये कोई संस्था साधारण संस्था नहीं है, ऑर्डिनरी संस्था नहीं है, स्वयं परमात्मा ने स्थापन की हुई संस्था है। और इस संस्था में आने के लिए पुण्य कर्म की पूंजी चाहिए। अगर आपके पास पुण्य कर्म की पूंजी नहीं है तो 1000 बार भी आपको कोई कहे चलो उसमें विद्यालय में आप नहीं आ सकते, यहाँ पहुंच ही नहीं सकते हैं। उस पुण्य की पूंजी ने आपको भगवान के दरवाजे पर पहुंचाया। अभी आपका दूसरा काम है परमात्मा को पहचानना है और उनके साथ अपना रिलेशन जोड़ना है। वो हमारा बाप है, बाप से हमें वर्षा मिलता है। परमात्मा जो नई दुनिया स्थापन करने जा रहे हैं उसमें हमें बहुत श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है, वर्षे के रूप में वो हमें मिलता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है जो आप यहाँ पहुँचे हैं और आगे चलकर ये योगाभ्यास करते जाएंगे तो आपका जीवन योग्य बनता जाएगा, महान बनता जाएगा और अपने जीवन का आनंद आप वास्तव में लेना शुरू करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके लिए है अगला क्वेश्चन। पूछ रहे हैं कि धोखे से बना रिश्ता कैसे चले, और जब आभास हो जाता है कि बहुत बड़ा धोखा मिल गया है तो कैसे अपनी स्थिति बनाए, और सेम वही कि जब बिजनेस में अगर हम कस्टमर को उधार दे देते हैं और जब वो उधारी हमको वापस न मिलती नहीं है तो ऐसे समय उसके साथ कैसे हम रिलेशन बना रखे। मना इन शॉर्ट दीदी यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिश्तेदार को या ऐसे आते हैं कस्टमर कि जानबूझकर अगर हमको ऐसा इरिटेट करे तो तब हमें उसका रिएक्ट कैसे करना चाहिए।
देखो हरेक के साथ प्यार से चलना, शुभ भावना से चलना, इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धू बनना है। वो सेंस तो रखनी ही है, परखना है कहाँ तक हम उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, कितना उधारी देनी है नहीं देनी है, वो परख शक्ति तो रखनी ही है ना। पर हमें जो कुछ व्यवहार करना है बल हम कायदे से चले, कानून का साथ ले, पर हमारी भावना आखिर उस आत्मा को सुधारने की है, सत्य समझाने की है, हमें और कुछ उनका नुकसान नहीं करना है, हमें तो अपनी चीज लेनी है वो तो लेनी ही है। तो इस दुनिया में कोई बुद्धू बनने की बात नहीं है, मूर्ख बनने की बात नहीं है, जीवन की हर घटना से हमें सबक सीखना है, हमें प्यार से चलना है, समझाना है, पर प्यार और समझ से नहीं समझते हैं तो फिर हमें प्रेम से कायदे का भी साथ लेना है।
बहुत धन्यवाद दीदी। इसमें ये है कि कई बार फाइनेंशियल इश्यूज भी उठते हैं, तो ऐसे समय क्या करें? लेकिन पैसे नहीं आते हैं या एकदम लॉस भी हो जाता है, स्थिति एकदम डाउन हो जाती है, और
नहीं, एक बार आपने उससे धोखा खाया तो फिर जाग जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि हमें आगे कैसे चलना है। अनुभव से आप परख भी सकते हैं ना कि समय कैसा है, लोग कैसे हैं, तो वहाँ फिर हमें वो समझदारी से भी आगे चलना है। ऐसा तो नहीं है कोई खोट खा के धंधा करना है, तो ऐसे धंधे का तो कोई मतलब ही नहीं है ना।
बहुत धन्यवाद भाई जी आपके लिए कि मेडिटेशन में जो हमको सजेशन दिए जाते हैं कि पहले एकाग्र हो, मनन चिंतन आदि हम शुरू भी करते हैं, लेकिन मन मेरा उसमें नहीं लगता है। और ये क्वेश्चन उठता है कि जब भगवान इस धरती पर आता है, चलो हमने वो मान भी लिया, फिर जीसस इशू कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है, इब्राहिम कहाँ है इस समय, तो काफी क्वेश्चन है कि इसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करें।
योगाभ्यास में एकाग्रता कैसी हो? कहते हैं मन को कभी भी काबू में नहीं ला सकते हैं, ऐसा कह के लोग छोड़ देते हैं। मन तूफान की तरह भागता रहता है, हाथी की सौंड की तरह हिलता रहता है, उसको कंट्रोल करना असंभव करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं। योगाभ्यास में मन और बुद्धि, इन दो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। आत्मा एक शक्तियों का पुंज है और उसकी तीन फैकल्टीज है, मन बुद्धि संस्कार। और मन बुद्धि ये योगाभ्यास में काम करती है। अभी मन और बुद्धि के बारे में आपको डिटेल जानकारी होना जरूरी है, तभी आप इन पर नियंत्रण और अनुशासन कर सकते हैं। मैं इसमें अंतर क्या है वो क्लियर आपके सामने करता हूं कि आत्मा की कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है। अभी मैं आपको दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न मेरा है कि आप कहां से आए हैं, आपका घर कहां है? पूछते ही आपका घर आपके सामने पिक्चर के रूप में दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, घर की तस्वीर दिखाई दे रही आपको? हाँ दिखाई दे रहे भाई, बोलो। हाँ दिखाई दे रही ना, आप मुझे देख रहे हैं फिर भी घर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, घर कैसा है? प्रश्न पूछते ही आप घर के बारे में बताना शुरू करेंगे, दो फ्लोर का है, नीचे तीन रूम है, ऊपर तीन रूम है, बाजू में बहुत अच्छा गार्डन है। ये सोच सोच के मुझे आप एक एक बात बता रहे हैं। तो देखने वाली शक्ति है बुद्धि और सोचने वाली शक्ति है मन। इसको थोड़ा एकांत में बैठकर एनालिसिस करो इसका, आंखें बंद करके स्वयं को आत्मा समझो। ये घर को देख रही है शक्ति, वो मेरी बुद्धि है, और घर के बारे में जो सोच रही है वो शक्ति मेरा मन है। इसको फील करो, एक्सपीरियंस करो, तो आपको उसका अंतर पता चल जाएगा। शरीर समझते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये जब अंतर को जानते हैं तो उनका प्रयोग हम करते हैं यथार्थ रीति से। तो अभी योगाभ्यास में हमें क्या करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से परमात्मा, ज्ञान सूर्य शिव को देखना है, और देखते ही मन आपका परमात्मा के प्रति सोचना शुरू करेगा, गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचना शुरू करेगा। भी मान लीजिए थोड़े समय के बाद आपका कनेक्शन टूट जाता है और टूटा हुआ कनेक्शन आपको एक सेकंड में जोड़ना है। उसकी सिंपल विधि है, सिंपल टेक्निक है, आत्मा स्वयं को समझो और बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है वो चेक करो और उसको परमात्मा पर चेंज करो। चेक इट एंड चेंज इट। जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी उतनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, मन आपका कंट्रोल में पूरा रहेगा। मन का मैं राजा हूँ, जो मैं ऑर्डर दूं मन को मानना जरूरी है। तो इस पोजीशन में जब हम स्थित रहते हैं तो मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं और आत्मा राजा अपने कर्मेंद्रियों पर शासन करता है और बहुत सुंदर एकाग्रता आपकी योगाभ्यास में रहती है। किसी भी कार्य में एकाग्रता रह सकती है। दूसरा प्रश्न कौन सा था इसके रिलेटेड? दूसरा प्रश्न
यही कहा था कि कैसे हम माने मन भटकता है, मन नहीं लगता है, जो हमको सजेशन दिए गए हैं कि मनन चिंतन ये सब सजेशन हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन मन मेरा उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
अभी देखो मन मना भव का मंत्र हमें परमात्मा देते हैं, मन मना भव, मन को मेरी याद में मनाओ, मन को याद में मेरी लगाओ रिझाओ। तो क्या है ये अभ्यास की बात है। धीरे 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 हम थोड़ा सा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसा बढ़ाते जाते हैं तो उसमें परमात्मा की याद का रस हमें आने लगता है, आनंद आने लगता है और शक्तियां हमें आने लगती हैं। तो धीरे धीरे जैसे प्राप्तियां अनुभव होने लगती हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और मन हमारा एकाग्र होता है। कोई भी बात में इंटरेस्ट जब आता है अनुभव के आधार पर आता है, प्राप्ति के आधार पर होता है। तो थोड़ा समय के लिए योग करते हैं, परमात्मा सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, उनके सानिध्य में रहने से हमें शांति मिलती है, सुख की अनुभूति मिलती है, आनंद की अनुभूति मिलती है। तो रस धीरे धीरे आने लगता है और उसमें रुचि हमारी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे मन उसमें टिकने लगता है। तो ये अभ्यास की बात है, ट्रेनिंग की बात है। तो जैसे माँ अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती है ऐसे आत्मा रूपी माँ को मन बुद्धि रूपी बच्चों को ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो ये दोनों स्वतः ही हमारे कंट्रोल में रहते हैं और बहुत अच्छा योगाभ्यास में हमें मदद करते हैं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी तथा आदरणीय दीदी का भी। काफी प्रश्नों के हमको जवाब तो मिल ही गए और भी काफी है जिनका जवाब कल जो हमारा सत्र होने वाला है कर्म फिलोसफी उसमें आपको 100% गारंटी की सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। समय के अनुसार हम यहाँ ही सवाल जवाब खत्म करते हैं। हमारे बीच ऐसे 3 बिजनेसमैन हैं जो अपना अनुभव यहाँ शेयर करना चाहते हैं। नेपाल से वसंत रोकाया भाई जो मंच पर आ जाइए, 2 मिनट आप अपना अनुभव यहाँ आकर शेयर करेंगे, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ के। और साथ ही साथ सादाबाद यूपी से राम निवास गुप्ता जी एंड अग्रवाल जी आप भी यहाँ आकर 2 मिनट अपना अनुभव जरूर बता सकते हैं। आपने यहाँ 3 दिवसीय सत्र में क्या अनुभव किया भाई जी? 2 शब्द 2 मिनट में आप सुनाएंगे।
ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय परम आदरणीय दादी जी एवं दीदियां, वरिष्ठ भाइयों और इस हॉल में उपस्थित संपूर्ण परमात्मा पिता के संतान, भाई और बहनों, मैं शांति का दूत गौतम बुद्ध का जिस देश में जन्म हुआ और सीता का जिस देश में जन्म हुआ, पवित्र देवभूमि जिस देश में पशुपतिनाथ का मंदिर है और माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है नेपाल, नेपाल की ओर से और मेरी व्यक्तिगत ओर से आप सभी को ओम शांति का अभिवादन करना चाहता हूँ। ओम शांति। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे, कृपया मैं नेपाल से आया हुआ हूँ और ये स्पष्ट हिंदी नहीं भी हो सकती है और इसको आप अच्छे तरफ से अगर मैं कहीं गड़बड़ा भी जाऊं तो आप सही तरीके से समझेंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि ये पवित्र ये धरनी में आज जो मैं बोलने जा रहा हूं कि बिजनेस और आध्यात्मिकता, तो अभी वरिष्ठ भाई भाई जी ने यहां बताया कि वरिष्ठ भाई जी को परमात्मा पाने की बहुत तरस थी, वो कहां परमात्मा इस धरती में आएंगे और मैं उनसे मिल पाऊंगा करके अभी जो भाई जी ने बताया। इसी तरफ मैंने पढ़ाई खत्म करा और मेरे को मैं कैसे पैसे कमाऊं और मुझे सुख शांति अमन चैन हो करके मुझे पैसे की तरस थी, तो मैं आज 20 साल से नेपाल में बिजनेस कर रहा हूं। पहले मैं मेरी परचुनी की मैंने दुकान रखी तो मैंने सोचा अब इसी से पैसे कमाऊंगा और मेरे आजू बाजू में जो अमीर लोग थे, बड़े बड़े महलों में बैठते थे और बड़ी बड़ी गाड़ी में चढ़ते थे, मैंने सोचा कि मैं भी इसी तरह से पैसा कमाऊं और इन्हीं की तरह सुख शांति और राजा के तरफ, परमात्मा के तरफ बैठूं। तो मैं इसी दौड़ में दौड़ता रहा, मेरा इसी में दौड़ था। तो उस वक्त कि वहां नेपाल के मैं सेती जोन प्रदेश नंबर 7 में मेरा घर है, वहीं मेरा बिजनेस भी है, तो वहां इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सेंटर खुला हुआ था, तो वहां के भाई बहन लोग मेरे वहां आते थे कि आप हमारे इस ब्रह्म कुमारी ओम शांति में आइए, इधर पधारिए करके वो कोई भी ऐसे फेस्टिवल आ गया तो मुझे बुलाती थी। तो मैं समझता था कि ये सफेद साड़ी वाली दो बहनें और मुझे बुला रही हैं और मैं सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक मैं पैसे के उसमें भाग रहा हूं, मेरा अपना काम है, आप लोग इधर आ रहे हैं। एक दो बार तो अच्छी तरफ से रिस्पेक्ट करा तो मैंने बोला आपके पास तो काम नहीं है, मैं अंदर समझता था कि आपके पास तो काम नहीं है भाई, मैं तो मेरे पास तो काम है, मैं तो पैसे कमा रहा हूं, मैं तो कल पैसे कमा के आराम से बैठना चाहता हूं। तो वो बिचारियां आती रहती थी, कभी मतलब ऐसे फेस्टिवल आए तो ये ज्ञान अमृत भी मेरे दुकान में छोड़ के जाती थी। तो उनने बोला चलो मधुबन, तो मैंने बोला मधुबन नहीं जाऊंगा, बहुत बार बोला, तो मैंने बोला पैसे कितने हैं, तो इतने, तो मैंने बोला पैसे ले जाओ। और अपने मन में मैं ये सोचा कि पैसे इनको चाहिए थे, पैसे मैंने दे दिया, काम खत्म हो गया। तो मैं जब मधुबन आने का टाइम हुआ तो मैंने बोला मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरा तबीयत खराब है, मैं तो नहीं जा सकता हूं, मैंने कैंसिल कर दिया। तो ऐसे होता रहा कि परमात्मा ने मुझे बोला बेटा तुझे पैसे की बहुत तरस है तो थोड़ा पैसे भी देते रहे, कि जब थोड़ा पैसे भी होने लगा, जब पैसे नहीं थे तो मैं 8 बजे सो जाता था, तो सुबह 6 बजे तक सोता रहता था। जब मेरे थोड़ा खाने के लिए मतलब थोड़ा पैसे आ गए तो रात को 12 बजे तक जगना था, उसके बाद 2 बजे नींद खुल जाती थी, तो फिर 2 घंटे सोना था। तो अब कल सुबह क्या करना है भाई, कल सुबह यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, बस उसी में मेरा दिमाग उसी में चल रहा था। तो बाद में तो ऐसा होगा कि 1 घंटे भी नींद नहीं आने लगी। तो इसी उसमें मैंने मकान भी बनाया, जो मुझे जरूरत थी वो चीज भी मैंने खरीदा, जो मैंने मेरे दिल में था वो चीज मेरे मुझे मिल गया। तो वो मिल गया तो और मुझे अशांति हो रही है, मुझे चैन नहीं आ रहा है भाई, ये क्या बात है। तो मुझे एक दिन ऐसे ही फंक्शन में बुलाया ओम शांति का, कि मुझे लग रहा है शिवरात्रि का फंक्शन था। तो शिवरात्रि के फंक्शन में बहन उद्घोषिका बहन थी, तो उनने बोला कि ऐसे वरिष्ठ उद्योगपति मतलब ये व्यापारी वरिष्ठ आदमी है तो यहाँ पधारे हुए हैं, उनका स्वागत है। तो इनसे बहुत दिन से हम उनसे बोल रहे हैं कोर्स करने के लिए, तो अब तो जरूर करेंगे, ऐसे तो बहुत बार बोल दिए थे। तो मैंने बोला मुझे बोलने का टाइम आया, तो मैंने बोला हाँ मैं कोर्स करूंगा। तो बाद में वो बहन ने फिर क्या बता दिया कि आज इस परमात्मा की यज्ञ में कि उनने कोर्स करने का वादा किया है, कोर्स करने के लिए उनने कहा है। तो मुझे डर लगा कि अब भाई ये तो मैंने गलत कर दिया, मैं तो झूठ बोल रहा था कि जब ये परमात्मा के यज्ञ में जब मैं झूठ बोलूंगा तो अब ये तो ठीक नहीं हुआ। तो मेरे मन में अंदर में घबराहट आ गई कि अब मैं फंस गया। तो बाद में बोला बहन जी मैं कोर्स करूंगा। तो जब मैं कोर्स करने लगा,
ओम शांति बसंत भाई, आपसे यहाँ आके क्या आपको लगा?
तो
ठीक है,
फिर कोर्स करा तो ये अभी मधुबन आने का मुझे ये अवसर मिला। तो मैंने उस दिन अमृता दीदी का सभी दीदियों का क्लास, भाइयों का क्लास सुना, तो मुझे अभी बहुत प्रस्ताव हो रहा है कि अगर मैं 10 साल पहले भी आ जाता तो मैं अभी बहुत धनवान हो जाता, मेरे को बहुत अमन चैन सुख शांति मिल जाती। बहुत लेट आया करके मुझे बहुत प्रस्ताव हो रही है, जो मैंने सोचा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी टाइम भी हो रहा है। रेगुलर 2 साल से क्लास भी कर रहा हूँ और पूरा टाइम भी मिल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। अब बाबा के जो मुझे सहारा मिला हुआ है इसको मैनेज करूंगा और बाबा के यज्ञ में अब इससे और ज्यादा ध्यान दूंगा। तो अमृता दीदी ने उस दिन बताया प्यार के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीदी बहन जो भी थे वो मुझे बहुत प्यार करती थी। तो मुझे मन में शंका था कि ये मुझे प्यार वैसे नहीं कर रहे हैं, कि मेरे से कुछ लेने के लिए प्यार मुझे कर रहे हैं। कुछ पकता था या टोलियां बनती थी तो दीदियां मुझे देती थी, तो मैं समझता था कि मेरे से कुछ लेने के लिए ये दीदियां मुझे प्यार कर रही हैं। जो लौकिक दीदियां और दीदी बहनें होती थी, बहन है, उनसे भी ज्यादा प्यार करती थी। तो उस दिन अमृता दीदी ने बताया कि भाई स्वयं परमपिता परमात्मा ने दीदी बहनों को खुशियां दी है, वही खुशियां हमको हम लोगों को देती हैं। मैंने सोचा ये बात एकदम ठीक है कि अब मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा कम भी है, ठीक है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपके अंदर बहुत सारी है कि क्या सुना और क्या नहीं। हम भी आपका बहुत धन्यवाद करते कि इतना दूर से आकर आपने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। आगे सादाबाद से भाई आएंगे।
रामनिवास भाई आप खुद ही अपना परिचय भी दीजिए।
ओम शांति। मैं रामनिवास गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद। ओम शांति। मैं रामनिवास गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद। इस मंच पर विराजमान परम आदरणीय दीदी गीता दीदी जी, परम आदरणीय भाई हातिम प्रकाश भाई जी, और मंच का सफल संचालन कर रही हमारी बहनें, और इस परम ब्रह्मा परम पिता शिव बाबा को मैं नमन करते हुए, इनके चरणों में नमन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापारी भाई बहन तथा यहाँ पर जिन्हें मुझे लाने में यहाँ तक मैं पहुँचा, उसमें हमारी सादाबाद की बबीता बहन भावना बहन का मैं बहुत बहुत आभार दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मुझे भगवान के दरबार में ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। मैं 31 तारीख को यहाँ आया हूँ, तब से मैंने ऐसा महसूस किया है, यहाँ पर प्रांगण के अंदर आने के बाद मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने हवा अंदर प्रवेश किया, यहाँ की हवा को महसूस किया, तो मेरी सारी थकावट दूर हो गई। और आज मुझे यहाँ 4 दिन हो गए, मैं जितना खा रहा हूँ पी रहा हूँ, मैं दिल्ली सादाबाद में 8 बजे 7 बजे उठता था, लेकिन उठने के बाद ना मेरा कोई खाने को मन करता था ना कुछ करता था। यहाँ मैं जब से 3:30-4 बजे उठ रहा हूँ, तो अपने आप के अंदर बहुत अद्भुत अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस कर रहा हूँ। और मुझे तो शिव बाबा से प्यार हो गया है, और मैं सभी आपसे कहना चाहता हूँ कि रहेगी जब तक जिंदगी, रहेगी जब तक जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्यार कर लो शिव बाबा के दरबार से, प्यार कर लो शिव बाबा के दरबार से। दुनिया के सताए लोग यहाँ शिव बाबा के दरबार में, शिव बाबा के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। समय का अभाव है, 2 मिनट का समय मिला है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ओम शांति, ओम शांति।
कल सुबह का प्रोग्राम ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे सुबह अमृत वेला रोज की तरह 4 से 5:15 और सुबह एक सेशन हमारा 7:30 से 8:30 तक। और फिर से एक बार हम आदरणीय भाई जी और दीदी का धन्यवाद करेंगे कि काफी हमारे सवालों के जवाब हमको मिल गए हैं। 2 मिनट साइलेंस में परमात्मा किया।